और इसके बाद एक और कौम। और देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए आए, किस बात की खुशखबरी? कि बुढ़ापे में बेटा मिलेगा। अच्छा, बाकी कौमों के किस्से नबियों के नाम के साथ आते हैं ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी हिजरतें की थी, इनको अल्लाह ने जाती मामलात में ज्यादा आजमाया, फैमिली प्रॉब्लम्स में ज्यादा डाला। अब उसी की तरफ कुछ इशारे, कहा तुम पर सलाम हो। फरिश्ते भी एक दूसरे को आते हैं तो सलाम कहते हैं, और जब इंसान मुसलमान होते हुए दूसरे को सलाम अलैकुम की जगह कुछ और हाय बाय कह दे, तो क्या उस पर अल्लाह की रहमतें उतरेंगी? ये भी आज रिचुअल आम करने की जरूरत है। आपको क्यों इस पे कोई शर्म आए कि आप किसी को मिलते हुए क्या सलाम अलैकुम? ये तो श्योर है, ये तो क्राइटेरियन है, ये तो आपके मेरे मुसलमान होने की एक अलामत है। तो आज से अपने लिए नियत कीजिए, बच्चे हों, आप हों, घर में है, बाहर है, जहां मिले एक दूसरे से प्यार से अस्सलाम वालेकुम कहे। ठीक है, कोई गैर मुस्लिम है वो हाय कहता है उसको हाय कह दें, वो बाय कहता है उसको बाय कह दें, उसको ना डिस्टर्ब करें सलाम करके, लेकिन आपस में सलाम को आम करें। क्योंकि जब हम सलाम के लफ्ज से शर्मिंदा है तो आप बताइए हम इस्लाम पे अमल कैसे करेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर ना गुजरी कि इब्राहिम एक बुना हुआ बछड़ा लेकर इनकी मेहमान नवाजी के लिए आ गए। क्या पता चला कि आते ही मेहमान को पूछना नहीं चाहिए क्या खाएंगे, पानी पियेंगे ठंडा के गरम, पानी आप पी के आएंगे, चाय आप पीते को नहीं, गर्मी है बहुत, सर्दी में आइसक्रीम खाते नहीं, चले फिर कुछ नहीं करते। मुस्लिम्स आर टू मच हॉस्पिटेबल। किसी का वाक्य आपने भी सुना होगा, दो तीन लोगों के डिफरेंट तरह से पढ़ा, जिसका खुलासा किया कि किस चीज ने उनको इस्लाम की तरफ माइल किया। वो कहते मैं किसी समंदरी सफर में कश्ती पे था या क्या था, तो मैंने देखा कि एक सियाह फाम शख्स भी, और वो मुस्लिम था। खैर सब बैठे हैं, थोड़ी देर बाद जब चली तो हर एक अपना लंच बॉक्स खोल के कुछ ना कुछ खाने लगता है। कहते हैं उसने अपना बैग खोला, पोटली सी थी, एक कोई भी बैग था, उसको जब खोला तो उसमें रोटी निकली, रोटी खोली, फिर उसके अंदर से एक साइड से उसने कोई चीज और इस तरह की सैलड चीजें निकाली। कह रहे मैं देख रहा था, उसने क्या किया अपनी उस रोटी को आधा किया, उन चीजों में से आधी चीजें उस पर डाल के तो बड़े प्यार से टिश्यू पे ला के तुम तो मेरे पास रख दी, कहने लगा आप ले ले। कहता ये थी वो पहली चीज जिसने मुझे इस्लाम के करीब किया, सब अपने हाल में मगन है, इसने मुझे क्यों ऑफर किया। इस सफर में अभी मुझे कोई याद आ रहा है, शायद नॉर्वेजियन ईयर में थे, तो इसमें खाना खरीदना पड़ता है और लोग कोई खरीदता कोई नहीं खरीदता। हम वैसे भी अब कोशिश करते हैं कि सादा खाना ही हो तो अपना खाना साथ रखा होता है, कुछ भी था तो जब खाना खोला ना, तो मेरे हस्बैंड की भी शहादत है, जो इधर उधर है उनको देते हैं, अक्सर लेते नहीं है ये लोग एक दूसरे का, लेकिन हमने जो भी था हमारे पास सैंडविच टाइप चीज थी तो खोल के तो इधर दिया। यकीन कीजिए कि एक बिल्कुल हम तीसरी लेन में थे तो हमारी दूसरी लेन में तीन थे, एक नॉर्वेजियन लग रहा था, दो और लोग थे, तो हमने पहले से देखा कि उसने भी कोई खाना दूसरों से, जो ही इन्होंने दिया ना उसको दिखाया तो कहने लगा इस फॉर मी, यस, ओह थैंक यू थैंक यू। पर अच्छा, इसके बाद उसने जब ले लिया, इन्होंने एक और डाल के नेपकिन पे, तो उसी को इशारा किया कि उधर ले, तो इतने शौक और जोर से उन दूसरों के मतलब उनको इशारे कर रहे कि खाना ले लो, और उसने खाया, और यकीन करे उतरने तक शायद उसने बीसियों बार थैंक यू बोला होगा। ये खाना हमारा नहीं था, ये इस्लाम का खाना था। शायद उसने उसके दिल में एक पॉइंट का भी दिल के अंदर इस्लाम के लिए जगह बना दी, तो यही इस्लाम होता है। तो बोल के थोड़ी तबलीग करते हैं आप, लैंग्वेज प्रॉब्लम, फुलां प्रॉब्लम, दिस एंड प्रॉब्लम, आप अपने रवैयों से देखिए। तो हजरत इब्राहिम ने, उनको नहीं पता ये फरिश्ते हैं, वो गए और गोश्त लेकर आ गए, और अच्छी मेहमान नवाजी ईमान की अलामत है, अल्लाह के नबी ने इसको ईमान के साथ जोड़ दिया। खैर, मगर जब देखा कि इनके हाथ खाने पर नहीं भरते तो इनकी तरफ से शक में मुबतला हो गए और दिल में इनसे खौफ महसूस करने लगे। क्यों? उस दौर में क्या होता था कि जब कोई किसी का खाना ना खाता तो दो बातों की अलामत थी, या तो वो दुश्मनी के इरादे से आया या कोई बुरी खबर लेकर आया। और इससे पता चला कि इब्राहिम जो थे वो गैब नहीं जानते थे, नबी थे लेकिन उनको ये नहीं था कि ये फरिश्ते हैं या क्या। बहरहाल खाना ना खाने पे परेशान हो गए, उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी भी खड़ी हुई थी और वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। बुढ़ापे में 40-60 नहीं 80-90 साल की उम्र की औरत को कोई कहे कि तुम्हारे बेटा भी होगा और वो बेटा जवान होगा, उसके बाद पोता भी होगा तुम्हारा, वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने इसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी सुनाई, वो बोली हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरे हाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया फूंस हो गई और मेरे मियाँ भी बुढ़े हो चुके हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप इसको ऐसे ही सोच ले कि 90 ईयर्स की औरत का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकला है, तो फिर यही कुछ तो बोलेगी कि ये अब लोग क्या कहेंगे और हम क्या करेंगे तो वो क्या करेंगे। तो इंसान खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फील किया कि हम जो खुशियां मांगते हैं जब मिलती हैं तो पहला जुमला ये निकलता है, ये कैसे हो गया, ये अल्लाह के हुक्म से हो गया। बहर अल काल व ताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हैं, इब्राहिम के घर वालों तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। क्या था इब्राहिम के घर में, कितने गज का था, क्या दुनिया का साजो सामान था, लेकिन रहमतों और बरकतों से भरा हुआ घर था। आप इब्राहिम की पूरी जिंदगी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, कहीं जाके पढ़ें। अलबिदाया नहाय बहुत अच्छी बुक है, बल्कि एक जिल्द में मेरा अहले मकबा कदूसिया की भी और दारुस्सलाम की भी छुपी हुई है, कसस अल-अंबिया, कसस नबीयीन के नाम पे, काफी ऑथेंटिक है। क्योंकि जब अंबिया के किस्से आते हैं तो उसमें बहुत सारे डर होता है कि कुछ ऐसी चीजें भी शामिल कर दी जाती है जो दुरुस्त नहीं होती, तो ये ऑथेंटिक स्टोर्स हैं, इनकी आप लेके पढ़ें। हजरत इब्राहिम की जिंदगी पढ़ें, पूरी जिंदगी इन्होंने अपना घर नहीं बसने दिया, अपनी जुबान में कह लें एक जगह टिके नहीं। दो बीवियां थी, सारा भी थी और हाजरा थी, दोनों से असमाए गए, हिजरतें, इधर से उधर, उधर से इधर, बच्चा हुआ तो उसको उधर छोड़ आए, उधर गए तो फिर उसको देखने जा रहे हैं, कभी कुछ, यानी हजरत इब्राहिम ने कभी भी रूटीन की लाइफ नहीं गुजारी, जिसको आप और मैं कहते हैं आप सुकून से बैठेंगे, होम स्वीट्स होम, नहीं। लेकिन देखिए अल्लाह ताला उनके घर को रहमतों और बरकतों वाला घर कहते हैं। आज भी अगर सच्ची रहमत और बरकत देखनी है तो आप उसी घर में आके देखें कि जहां दोनों को अल्लाह ताला ऐसे जोड़ सबके बना दे कि जो शोहर और बीवी एक ही कॉज पे काम कर रहे हो, एक ही धुन सवार है कि अब क्या अब क्या अब किधर अब क्या, मर्दों को नमाजों की पड़ी हुई है और औरतों को अल्लाह के दीन की पड़ी हुई है। फिर आप देखिए कि वहां जो खुशी बनती है उसका जिक्र अब आपको इनायत में दिखेगा, कि इब्राहिम के घर वालों तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। और यकीनन अल्लाह नहायत काबिले तारीफ और बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बिशारत से इनका दिल भी खुश हो गया, तो उन्होंने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। हकीकत में इब्राहिम बड़े हलीम और नरम दिल आदमी थे और हर हाल में हमारी तरफ रजू करते थे। ये तीन खूबियां लिख लें, हिल, नरम दिली और हर हाल में अल्लाह की तरफ रजू, ये अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें दिलाती हैं। देखिए एक होता है इल्म, लिखिए जरा, आपको इल्म मिला, अगर सिर्फ इल्म मिले और हिल्म ना मिले ना तो तबाही है, तकब्बुर है। जिनको सिर्फ इल्म मिलता है ना वो दिन ब दिन सख्त होते हैं, स्टबन, नए कपड़े की तरह कड़ी हुई चादर की ताकत है, अब तो इल्म मिल गया, अब तो कुरान पढ़ लिया, अब तो हमने और भी डिग्री ले ली। लेकिन अगर इल्म के साथ हिल्म डाल देना, आजजी, नरमी, सॉफ्टनेस, तो वो असल में फिर काम की चीज तो बनती है। और नरम दिली, नरम दिल शख्स के सिवा कोई बंदा अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए वक्फ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये यकीन होता है कि अल्लाह के बंदे कितने प्यारे हैं। अपने लिए दुआ करते हैं हम सब, अल्लाह मेरा दिल नरम कर दे। और नरम दिल क्या होता है, गुनाहगारों को देखकर रोना आ जाए कि अल्लाह ये आग में जाएंगे, किसी काफिर को राह चलता देखकर एकदम आंसू आ जाए कि अल्लाह ये आग में जाएगा। और सख्त दिली क्या होती है, ये काफिर, हाँ ये जहन्नमी, हाँ ये फुला, देखना अल्लाह इनसे पूछेगा। इतना सख्त आपका दिल है कि आप किसी को जलता देखें और आप खुश हो, नहीं। और फिर उसी के साथ अल्लाह की तरफ रजू, और ये तीन खूबियां थी जिसने इब्राहिम को अल्लाह के यहां मुकाम दिलाया। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उनसे कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इससे बाज आ जाइए, आपके रब का हुक्म हो चुका और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। फिर जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, ये कौन थे, भतीजे थे इब्राहिम के, अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने इनको करीब एक और बस्ती थी सदूम नाम की उसमें नॉमिनेट कर दिया। अब वो कौम थी होमोसेक्सुअल, गेइज्म था वहां, और इब्राहिम को खुशखबरियां दी जिन फरिश्तों ने, अब वही यहां अजाब की खबर लेके जा रहे हैं। और इब्राहिम की ये बेचैनी क्या थी कि वहां तो लूत है मेरा भतीजा, तो अगर उस बस्ती पे अजाब आ गया तो उनका क्या होगा, इसी वाक्य को आगे देखते हैं। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इनकी आमद से वो बहुत घबरा गए और दिल तंग हुए और कहने लगे कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है, इन मेहमानों का आना था कि इसकी कौम के लोग बेख्तियार इनके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वैसी ही बदकारियों के खूगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये आपके लिए पाकीज़ा तर हैं। कुछ अल्लाह का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील न करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और तू ये भी जानता है कि हम क्या चाहते हैं। देखिए, लस्ट जब सर पे चढ़ती है ना, जब जज्बात दिमाग के ऊपर सवार होते हैं, तो जुबान कितनी गंदी हो जाती है। कहेंगे हमें औरतों से कुछ नहीं लेना, तुम्हें पता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन। लूत ने कहा, काश मेरे पास कोई ताकत होती तो तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता और इसकी पनाह ले लेता। तब फरिश्तों ने इससे कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो याल को लेकर निकल जाओ, और देखो तुम में से कोई पलट कर पीछे न देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा, तो हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया, यानी ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन कर दी, और इन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के हाँ निशान जदा था, और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं। ये थी कौमे लूत। मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ताला का यही कानून आज भी होता, तो आज मैं और आप भी यही गवाहियां दे रहे होते हैं कि जमीन के किन खित्तों पे ये अजाब आए और ये लोग बर्बाद हो गए। स्टबन औरतों में इनको दिलचस्पी नहीं रही, अपने घर के ऊपर झंडे लगा रखते थे। हजरत लूत की बीवी का जिक्र आया तो समझ लीजिए कि नबी की बीवी कभी भी फाहिशा नहीं होती, जानिया नहीं होती। उसकी मोहब्बत और उसकी हमदर्दी अपनी कौम से थी। हजरत लूत चूंकि दूसरी बस्ती से वहां गए थे ना, असल में तो ये बैतुल मकदस के ही राही थे, हजरत इब्राहिम के रिश्तेदार थे, लेकिन इनको जब सदूम में भेजा तो आप कह लीजिए कि दूसरे बस्ती में गए, वहां से इनकी शादी हुई जब बीवी से, तो बीवी को अपना खानदान और बिरादरी अजीज थी। जब उसकी कौम में ये बुराई पैदा हुई, तो ये क्या करती थी, जब कभी कोई खूबसूरत मर्द या लड़के इनके घर के इर्द गिर्द होते, तो वो अपनी कौम को इशारे कर देती थी कि घर में लड़के आए हैं। यानी शौहर के मिशन में शामिल होने की बजाय मैके की मोहब्बत का दम भरती रही। अल्लाह ताला ने उसको भी तबाहो बर्बाद कर दिया। आज तो मैं समझती हूँ कि ये लफ्ज आज मैं कहती हूँ तो मैं फिर रुक जाती हूँ, क्योंकि ये बात भी अब सुनते सुनते थोड़ी सी 10-12 साल से तो हम लोग भी ये लफ्ज सुन रहे हैं ना, दुनिया में इससे पहले तो सुना भी नहीं था। और सहाबा किराम कहा करते थे कि अगर कुरान में कौमे लूत का किस्सा ना होता, तो हम कभी मानते भी ना कि ये पॉसिबल अमल भी है कि नहीं। खिलाफे फितरत, खिलाफे अकल, आप किसी एंगल में भी देख लीजिए, ये फितरत के भी खिलाफ है, मेडिकली भी बिल्कुल अकल में ना आने वाली चीज है। लेकिन शैतान किस तरह नाचता है, हर तरह से आज जहनों को पाक कर दो कि ये सोखे, इस पे बात करे ही कोई ना, ताकि लोगों को एक दफा जानवरों की तरह फ्री सेक्स पे ले आओ तो बाकी सारे काम आसान हो जाएं। तो क्या ये अल्लाह के अजाबों को बुलाने वाली बातें नहीं है? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे फितनों से महफूज रखे, और इसीलिए सूरत यूसुफ पढ़ने की जरूरत है कि उसमें इन्हीं फितनों का रद्द है। कोई बाहर से हम पाबंदियां नहीं लगा सकते, हमें अपने बच्चों के अंदर से दीवारें उठानी पड़ेंगी तकवा और एहसान की, वरना वो कभी आपके मेरे डर से कोई गुनाह छोड़ भी देंगे, जो ही मौका मिलेगा उसको छोड़ देंगे, और अल्लाह ताला बचा के रखे।